ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारतीय वन सर्वेक्षण के महानिदेशक अनूप सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
वन और वृक्ष प्रकृति द्वारा हम सबको दिए गए साझा उपहार हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। ताजा अनुमान के अनुसार भारत का कुल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर 8,27,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के 25% से अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष क्षेत्र में लगभग 1,500 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फॉरेस्ट कवर में 156 स्क्वायर किलोमीटर और ट्री कवर में 1,289 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़त हुई। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में जो कहा, आइए सुनते हैं।
रिपोर्ट का जो सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हमने जो पेरिस एग्रीमेंट में कहा था, विशेष रूप से हमने कहा था इंडिया हैज कमिटेड टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 टू 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्वलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। CO2 इक्वलेंट की जो बेसलाइन 2005 में हमारी 28.14 बिलियन टन थी, आज वो इंक्रीज होकर के 2.29 बिलियन टन हो गई है। और एक लक्ष्य के हिसाब से अगर यही ट्रेंड रहता है तो 2030 में हमारा जो अचीवमेंट है 31.71, ये हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
ये हमारा सौभाग्य है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली संस्था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल श्री अनूप सिंह हमारे साथ हैं, हमें और जानकारी देने के लिए इस रिपोर्ट की बारीकियों पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए अनूप जी।
थैंक यू वेरी मच।
अनूप जी, आपसे जानना चाहेंगे ये रिपोर्ट जो जारी हुई है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके जो प्रमुख एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लेकर कौन से ऐसे प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं जिनको ये उजागर करती है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिपोर्ट का?
जैसा कि नाम बताता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट या भारत वन स्थिति रिपोर्ट, तो दोनों तरह से मतलब ये फॉरेस्ट की कंडीशन जो है, किस स्थिति में हमारे भारतवर्ष में वन, उसके बारे में ये सारी परिस्थितियों को उजागर करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये आईना है वन वन का, कि इसमें हमको साफ दिखाई पड़ता है कि हमारे वनों की परिस्थिति क्या है। हर देश के लिए जरूरी होता है कि हम जब भी विकास की ओर चले तो हम पर्यावरण का हाथ ना छोड़े। पर्यावरण और विकास साथ साथ, एक हाथ में पर्यावरण एक हाथ में विकास साथ लेके चलते हैं, दोनों हैंड इन हैंड आगे बढ़ना है। तो ये रिपोर्ट जो ये बता रही है कि हमारी पॉलिसीज कैसे काम कर रही हैं, और यदि हम सही दिशा में पर्यावरण को लेकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो हालांकि विकास की आवश्यकता है, विकास के साथ हमें रहना है, देश का विकास हो रहा है जो कि बहुत ही खुशी की बात है, साथ साथ वनों का भी विकास हो रहा है, इससे ज्यादा हर्षोल्लास की बात कोई हो नहीं सकती। ये जो रिपोर्ट है ये एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स है, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स, मीडिया, एकेडमिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इवन आम आदमी, एनजीओस, स्टूडेंट्स, सब लोग इस रिपोर्ट को रेफर करते हैं। इस रिपोर्ट से इनको जानकारी मिलती है कहाँ पे हम सही हैं और कहाँ हम गलत हैं, क्या काम हम और बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत मेजर रिपोर्ट है कंट्री की, बहुत इंतजार किया जाता है इस रिपोर्ट का।
और जो फॉरेस्ट कवरेज और ट्री कवरेज इसमें इसका आंकन किया जाता है, बता सकते हैं कि ब्रॉडली कैसे किया जाता है, क्या मेथोडोलॉजी है, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है इतने विशाल प्रोजेक्ट के लिए, इतने बड़े देश में इस तरह का आकलन करने के लिए?
देखिए, आम तौर पे यदि हम किसी इलाके में रहते हैं और किसी सड़क से गुजरते हैं तो हम आसपास के वनों को देखते हैं, उससे हम अपना एक व्यू पॉइंट बनाते हैं, एक परसेप्शन बनाते हैं कि हमारे इस एरिया का वन कैसा है, या वन घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं ये परसेप्शन नहीं है, ये पूरा पूर्णतया एक साइंटिफिक तकनीक इस्तेमाल करके ये काम किया जाता है। पूरे भारत देश की फॉरेस्ट कवर मैपिंग करी जाती है, जिसमें कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से हम लिस्त्री एक सेंसर है, उसकी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, हमारे भारतवर्ष का स्वयं का सैटेलाइट है, तो जिससे कि हम सैटेलाइट इमेजरीज लेते हैं, और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर सैटेलाइट इमेजरी लेने के बाद उस पर हम लोग कार्य करते हैं, जो उसको सुधारना होता है वगैरह। उसके अलावा उसका पूरा इंटरप्रिटेशन होता है, तो वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, जो कि हमारे यहाँ करीब 80 लोग जो हैं जो कि इस इंटरप्रिटेशन कार्य पे काम कर रहे हैं। और इंटरप्रिटेशन करने के बाद हम लोग पूरे देश में घूमते हैं, तो करीब 8,500 पॉइंट हम लोगों ने इस बार कवर किए थे मात्र अपने फॉरेस्ट कवर मैपिंग को, जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे घना जंगल है या अत्यंत घना जंगल है या ओपन फॉरेस्ट है या जंगल नहीं है, तो सारी इंटरप्रिटेशन को, या मैंग्रोव है, तो सारे इंटरप्रिटेशन हमारे सही है नहीं इसको चेक करने के लिए और अपने इंटरप्रिटेशन को सुधारने के लिए जो है हम पूरे देश में घूमते हैं। और उसके अलावा हमने 2016 से 2022 के बीच में तकरीबन 90,000 पॉइंट डाले हैं पूरे कंट्री में। पॉइंट का मतलब होता है इस ये प्लॉट्स डाले जाते हैं और इन प्लॉट्स में जाकर के फॉरेस्ट में और ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट में वन एरिया के अंदर या वन के बाहर भी इन बिंदुओं पे जाकर के हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह का जंगल है या किस तरह के पेड़ हैं। तो इन पेड़ों की नपाई जुखाई होती है, इनका डायमीटर नापा जाता है, इनका घन मीटर देखा जाता है और उसके हिसाब से उसके बाद फिर हम निकालते हैं कि कितना ग्रोइंग स्टॉक है। और ये ग्रोइंग स्टॉक मतलब ये भारत के वनों के अंदर कितना है और वनों के बाहर कितना है इसका भी आकलन होता है। तो हमारी एग्रोफॉरेस्ट्री की पॉलिसी आई थी, तो एग्रोफॉरेस्ट्री की नेशनल पॉलिसी के अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपनी बहुत सी एग्रोफॉरेस्ट्री को बढ़ोतरी देने के लिए स्कीम चला रखी हैं। बहुत हमारे देश में बदलाव हुए हैं जिसमें हम लोगों जैसे नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम स्टार्ट किया है, जिससे कि कोई भी अगर वन उत्पाद हो तो उसको हर स्टेट में अलग अलग परमिट लेने की आवश्यकता ना पड़े, एक बार परमिट लिया जाए तो आखिरी तक परमिट जाए। उसके अलावा बहुत सी स्पीशीज को हम लोगों ने एग्जेम्प्ट किया है परमिट सिस्टम से, जिससे कि कोई भी किसान अगर इन पेड़ों को लगाता है तो उसको काटते वक्त जो है बहुत ज्यादा सरकारी कार्रवाई के बीच में ना पड़ना पड़े। उसमें उलझ करके कई बार लोग पेड़ लगाने में झिझकते हैं, संभलते हैं, डरते हैं, तो उन सारी चीजों को आसान करने का बहुत प्रयास किया गया है। उसी का नतीजा हमें दिख रहा है कि हमारी एग्रोफॉरेस्ट्री में बहुत ग्रोथ हुई है और ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट में भी काफी ग्रोथ हुई है।
अगर हम देखें तो 25.17% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बताया गया है रिपोर्ट में, और ये 2021 के मुकाबले 1,445 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़त है। सो आप हमें बता सकते हैं कि ये जो बढ़ता फॉरेस्ट और ट्री कवर है इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे देश को, पूरे इकोनॉमी को?
हम लोग सही दिशा की ओर अग्रसर है, लेकिन जैसे हमको हमेशा बचपन से पढ़ाया गया है और हमारे माता पिता ने जैसे संस्कार दिए हैं कि हमारे 80% नंबर आते थे तो कहते थे बेटा और पढ़ाई करो, 90 नहीं आए 100 नहीं आए, फिर पढ़ते थे 90 आते थे तो कहते थे बेटा 100 नहीं आए, तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन हम इस डायरेक्शन में हमें और प्रयत्न हम करेंगे और हमारे हम अव्वल दर्जे से पास हों और हमारा और देश विदेश में नाम हो, हमारे देश का जो विदेशों में नाम हो, अभी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में बहुत नाम होता है, तो मतलब बहुत खुशी की बात है। ये कई बार ऐसा होता है कि कंफ्लिक्टिंग फोर्सेस रहते हैं, मतलब विभिन्न जो है ताकतें जो है, कहीं पे पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा होता है, कहीं पे लाइव स्टॉक प्रेशर ज्यादा होता है, मतलब जानवर चराई के लिए आते हैं वनों में तो उससे भी कहीं जगह पे रीजनरेशन इफेक्ट होता है। और लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी तरफ हमारी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटीज या वन संरक्षण समितियां जो बनाई गई हैं ये काम कर रही हैं और बहुत बड़ी जागृति जो है वो लोगों में आ चुकी है कि मतलब वन की आवश्यकता क्यों है और वनों के नुकसान से या वनों की कटाई से उनको क्या क्या नुकसान होता है, मतलब कहाँ कहीं पे सूखा पड़ जाता है, कहीं पे जो टॉप साइल आता था वो ज्यादा आ जाता है, बाढ़ की वजह से उनके खेत डूब जाते हैं, तो सबको फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस धीमे धीमे मालूम चल रही है। और ट्रेडिशनली हम लोग वनों से तरह तरह की दवाइयों को लेते रहे हैं, चाहे आप वन हल्दी की बात कर ले, चाहे आप जो भी वन से लेते हैं, तो अब तो काफी चीजों कल्टीवेशन भी शुरू हो गया है, तो वनों की इम्पोर्टेंस तो बढ़ती ही जा रही है। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि वन के बाहर होती हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है सीधे वनों के ऊपर पड़ता है, जैसे कि उज्ज्वला स्कीम आई। उज्ज्वला स्कीम में जब गैस लोगों को मिलनी शुरू हो गई तो अपने आप जो है फ्यूल वुड के लिए, मतलब जलथन के लिए लकड़ी जो काटी जाती थी जलाने के लिए, वो सब जो है कटनी बहुत कम हो गई या नहीं के बराबर हो गई, तो सारी चीजें मतलब फर्क पड़ रही है। और कोविड आया था तो कोविड के बाद एक बहुत बड़ी लोगों ने रियलाइज करी कि हमें भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कंसंट्रेट तो कर सकता है ऑक्सीजन लेकिन बना नहीं सकता, तो बनाने का एकमात्र मार्ग जो है वो है वन, हमारे ये जंगल। तो धीमे धीमे मतलब जागृति बढ़ गई है और इससे जो है सबको जो है एक तरह से हरियाली हमारी हरित प्रदेश होता जा रहा है।
पूरे भारत में मध्य प्रदेश वह राज्य है जहां फॉरेस्ट कवर सबसे अधिक रहा और फॉरेस्ट और ट्री कवर में भी एमपी सबसे ऊपर रहा। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट हमारे मध्य प्रदेश कॉरेस्पॉन्डेंट संजीव शर्मा की, जो हमें बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश ने ये उपलब्धि कैसे हासिल की।
मध्य प्रदेश में आज से ही नहीं सालों से सरकार पौधारोपण और वन संरक्षण पर खास ध्यान दे रही है, यह बात हाल ही में आई इस रिपोर्ट से भी साबित हुई है। और मध्य प्रदेश ने एक बार फिर देश में सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले राज्य का स्थान बरकरार रखा है। राज्य का कुल वन और वृक्ष आवरण 85,724 वर्ग किलोमीटर है, जो देश में सबसे अधिक है। इसके साथ ही वनावरण क्षेत्र 77,073 वर्ग किलोमीटर के आसपास पहुंच गया है। चूंकि मध्य प्रदेश हम सब जानते हैं आदिवासी बहुल है, इसलिए सरकार ने वन संरक्षण के लिए प्रदेश में पेसा नियम के अंतर्गत 11,198 वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण वन समितियों का गठन किया है। वहीं 1,742 लघु वनोपज आधारित माइक्रो प्लान भी तैयार किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार कृषक समृद्धि योजना भी चला रही है, जिसमें 5,000 पौधे तक निःशुल्क दिए जाते हैं किसानों को और प्रति जीवित पौधे पर 2 वर्षों में 25 रुपए का अनुदान भी मिलता है।
मैनग्रोव्स और बैम्बू एरियाज में भी बढ़त हुई है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
बैम्बू को हम लोग पुअर मैन्स टिम्बर भी कहते थे और पेपर मिल्स में मतलब काफी इसका उपयोग होता था, अब थोड़ा कम हो गया है। लेकिन अब तो बैम्बू के इतने उत्पाद निकल आए हैं कि रोज हमको चौंकाने वाली खबर मिलती है। अभी तक तो हमने टूथ ब्रशेस देखे थे, कंघियां देखी थी बैम्बू की बनी हुई और तरह तरह के मतलब बालों में लगाने वाले उस तरह के या पर्सेस वगैरह देखे थे। अब मुझे कल ज्ञात हुआ कि बैम्बू का क्लॉथ भी बन रहा है। अब बैम्बू कपड़े से बहुत ही गर्मियों में पहनने के लिए खासतौर से बड़े ही आराम देने लायक कपड़े मिल रहे हैं। बैम्बू के एक और सबसे बड़ी बात है कि बैम्बू बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है, तो फास्ट ग्रोइंग होता है और बैम्बू के इकोलॉजी के लिए भी बहुत फायदे हैं, क्योंकि आप वहाँ पे देखिए तो बैम्बू के जहाँ लीव्स गिरी रहती है वहाँ पे आपको बहुत से मतलब चिड़ियों के, वन मुर्गियों के, इवन सांप के जो है आपको अंडे घोंसले मिलेंगे। तो बैम्बू के बहुत इस्तेमाल है और कमर्शियल वैल्यू भी बैम्बू की बहुत ज्यादा है। लेकिन सीधे देखा जाए तो डायरेक्ट हम ये कहना चाहेंगे कि 2.5 बिलियन लोग जो है वो बैम्बू के ऊपर डिपेंडेंट है और भारत देश में करीब 20 लाख लोग हैं जो कि बैम्बू के आर्टिजन्स हैं और बैम्बू के ऊपर सीधे बैम्बू बास्केट वगैरह वगैरह से। हालांकि बैम्बू का प्रोडक्शन अच्छा है और बैम्बू बढ़ रहा है, लेकिन बैम्बू का यूटिलाइजेशन हम और बढ़ाना चाहेंगे अपने रोजमर्रा के कामों में।
अनूप जी, एक और जो पेरिस एग्रीमेंट थी क्लाइमेट चेंज पर, उसमें हमारा जो नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन थी उसमें एडिशनल कार्बन सिंक का टारगेट रखा गया था 2.5 से 3 बिलियन टन्स 2030 तक, और अभी 2024 में हम ऑलरेडी 2.29 बिलियन टन्स अचीव कर चुके हैं। और कार्बन स्टॉक का भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 81.5 मिलियन टन्स का इजाफा हुआ है। तो ये बता सकते हैं थोड़ा सरल शब्दों में इन आंकड़ों का क्या सिग्निफिकेंस है?
हमारा देश उन चंद देशों में है जिनमें की वनों में बढ़ोतरी हो रही है। वनों में जो पेड़ है ये ऐसे सेवक है जो हमसे कोई सेवा नहीं मांगते लेकिन हमारी हमेशा सेवा करने को तैयार। तो ये जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे गाड़ियों से या पावर प्लांट से या एयर कंडीशनिंग यूनिट से जहां जहां पे भी फॉसिल फ्यूल्स खर्च हो रहे हैं, लकड़ी जलाई जा रही है, वुड स्टॉक जलाया जा रहा है, जहां जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसको इंडस्ट्रीज से रिलीज हो रही है, तो उसको सिक्वेस्टर करने का मतलब उसको पकड़ने का काम जो है हमारे वन कर रहे हैं। और इसमें चूंकि हमारे यहाँ वनों की बढ़ोतरी हुई है, सारे वन विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो जो 2.5 से 3 बिलियन टन का टारगेट था हमारा 2030 तक, इसको हम एक्सीड कर जाएंगे, इसको हम क्रॉस कर जाएंगे, हम 3 बिलियन टन के भी आगे निकल जाएंगे। तो इससे जो है आपका मतलब हमारे देश पे ही नहीं, हम पूरे के पूरे ब्रह्मांड की या मतलब पूरी दुनिया की जो है हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसको कैप्चर करने का हम काम कर रहे हैं, जिसका कि सीधा जो है क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट आएगा।
एक और एस्पेक्ट जिन पर मंत्री जी ने बात कही, उन्होंने कहा कि रियल टाइम फायर अलर्ट्स और फॉरेस्ट फायर सर्विसेज जो आपने प्रोवाइड की हैं FSI ने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके, वो बहुत सराहनीय है। सो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है।
देखिए, वनाग्नि तो फिलहाल 3 सालों में थोड़ी घटी है और वनाग्नि के जो भी अलर्ट्स हम लोग भेजते हैं उसमें सबसे पहले तो हम नासा के सैटेलाइट्स का डेटा जो कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर डाउनलोड करता है वो डाउनलोड करके हमें भेजता है और उस डेटा को हम लोग जो है आगे अलर्ट्स में उसमें उसके किस फॉरेस्ट डिविजन से आया है, ये हॉटस्पॉट कहाँ आग लगी है और किस फॉरेस्ट बीट में आग लगी है, किस वन संरक्षण समिति के पास आग लगी है, तो पूरा डेटा जो है उस पर डाल करके हम वन विभाग में को भेजते हैं ईमेल द्वारा और SMS के द्वारा। SMS से हमारे बहुत से नागरिक भी जुड़े हुए हैं और बहुत से गांव के सरपंच और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन, स्कूल के टीचर्स, ये सब लोग जुड़े हुए, क्योंकि वन अग्नि जब होती है तो इफेक्ट सारे लोग होते हैं।
अनूप जी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारतीय वन सर्वेक्षण के महानिदेशक अनूप सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।